ஹரிஹந்தாணம் நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயிரியாணம் நமோ வஜ்ராயாணம் நமோ லோயே சர்வசாரணம். ஹே சுபஞ்சணமோ யாரோ சர்வ பாவ பநாசனோ மங்களானம் சி சர்வேசம் மங்களம் சத்தாரி மங்களம் ஹரிஹந்தா மங்களம் சித்தா மங்களம் சாஹு மங்களம் கேவலி பணத்தோ தம்மோ மங்களம் சத்தாரி லோகுத்தமா ஹரிஹந்தா லோகுத்தமா சித்தா லோகுத்தமா சாஹு லோகுத்தமா கேவலி பணத்தோ தம்மோ லோகுத்தமோ சத்தாரி சரணம் பவஜாமி ஹரிஹந்தே சரணம் பவஜாமி சித்தே சரணம் பவஜாமி சாஹு சரணம் பவஜாமி கேவலி பணத்தம் தம்மம் சரணம் பவஜாமி. விகத் தினோ சே அப்னி யஹா பார பாவனா கே சந்தர்ப் மே சர்ச்சா சல் ரஹி ஹை. இஸ் சந்தர்ப் மே அனித்ய பாவனா, ஆஷரண பாவனா ஔர் சம்சார பாவனா கி ஹம் யஹா பாத் கர் சுகே ஹை. மே யதி பிராரம்ப சே ஹி பாத் கரூ தோ இஸ் ஜீவ் கி யஹ மான்யதா ரஹதி ஹை கி ஜோ ஹமே மிலா ஹை வோ பனா ரஹே. பில்கல் யாத் ஹோயேகி ஆப்கோ சப் பாத்தே ஜோ மிலா ஹை வோ பனா ரஹே. तो आचार्यों ने बतलाया भैया वस्तु का स्वरूप है अनित्य है, वो बना नहीं रहता है, वो टिकेगा नहीं. आज आपने कोई चीज बनाई तो एक दो दिन में तीन दिन में खराब हो जाएगी, ज्यादा लंबे समय चलेगी तो साल भर में खराब हो जाएगी, दो साल में खराब हो जाएगी. लेकिन उसका परिवर्तन परिणमन तो प्रति समय चल रहा है, बदलाव तो हर समय हो रहा है उसमें. इसका मतलब वस्तु अनित्य है. हम देखते हैं रोजाना जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होता है. जो वस्तु अभी दिख रही है अच्छी वो खराब होती हुई दिखाई देती है. फिर इसको सब बात समझ में आ गई और इसने कहा कि हाँ बात तो बराबर है लेकिन आई विल ट्राई, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि इसको बचा लूं, कुछ न कुछ कोशिश की जाएगी. हम मंत्र तंत्र का सहारा ले सकते हैं, देवी देवताओं की शरण ले सकते हैं, परमात्मा की शरण ले सकते हैं, कोर्ट की शरण ले सकते हैं और डॉक्टर्स की शरण ले सकते हैं. कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करेंगे कि बचा लेंगे. तो फिर आचार्य देव ने कहा भैया जिन समस्त वस्तुओं का स्वरूप अनित्य था वे सभी वस्तुएं अशरण भी हैं, अर्थ बचाने से भी नहीं बचती. अच्छा, जब विस्तार से इस बात को समझाया गया तो सब बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात. हाँ बात तो ऐसी है, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, हमने उनको बचाने का बहुत प्रयास किया था लेकिन फिर बचा नहीं पाए. साशरण है, सहारा कोई नहीं है इस जगत में. ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई. फिर नई बात कहने लगा, ये कहने लगा कि भाई अनित्य भी है आशरण भी है, ये तो समझ में आ गई, लेकिन उनके चले जाने से या बचाने से नहीं बचेंगे. जो फ्यूचर में होगा सो होगा, अभी जब तक वो वस्तु हमारे पास में है तब तक सुख भोग लेने दो. होगा जो होगा, जब सबकी सब देखेंगे. आज उस चीज के बारे में काय को मातम मनाएं, आज हम क्यों दुखी हो उस बात को याद करके कि खराब हो जाएंगी, चले जाएंगी, छूट जाएंगी, मर जाएंगी. होगा जो होगा, जब तक लड्डू है तब तक लड्डू को खा के मजे मनाओ, खराब होंगे तब होंगे, उस बात को क्यों याद करें अभी. तो संसार भावना के माध्यम से कहा कि जिनमें आप सुख भोगने की बात कर रहे हैं उनमें सुख है ही नहीं. संसार भावना के अंदर क्या बात कही थी, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में. पूजन की पंक्तियां पढ़ रहे थे अपन, इसी के आधार से बात कर रहे हैं। मतलब संसार में कहीं भी सुख नहीं है, और साथ में ये भी कहा कि यदि तुम इनमें सुख मानने का प्रयास करोगे तो ऐसे कर्म बंधेंगे कि भविष्य में भी दुख उठाना पड़ेगा। सुख नहीं है मानोगे तो भविष्य में भी दुख उठाना पड़ेगा, ऐसे कर्म बनेंगे। तो ये फिर नई बात कहने लगा, कोई बात नहीं, हम नहीं डरते कर्मों से, पाप कर्म का उदय आएगा तो आ जाएगा, हम कोई अकेले थोड़ी ना है, पूरा परिवार है हमारे साथ में, अकेले थोड़ी ना भोगूंगा, सब मिल बांट करके भोग लेंगे। और जब तकलीफ आती है और सब मिल बांट के भोगते हैं तो तकलीफ कम लगती है। तो फिर आगे आचार्यों को एकत्व भावना लिखनी पड़ी और उसने ये कहा कि इस धोखे में मत रहना कि सब मिल बांट के कर्म का उदय भोग लेंगे, अकेले अकेले कोई भोगना पड़ता है। एकत्व भावना में क्या कहा, देखो दौलत राम जी की पंक्तियां वो बिल्कुल इससे सटीक दिखती है। पांचवी ढाल में बारह भावना लिखी छेड़ाला में, उसमें उन्होंने लिखा शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा हो ये नसीरी सब स्वार्थ के हैं वीरी। जितने भी शुभ अशुभ आदि कर्म हैं, इन कर्मों को इस जीव को अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है, न पत्नी साथ देती है, न पुत्र साथ देता है, न परिवार वाले साथ देते हैं, वे सब तो स्वार्थ के सगे हैं। क्या बात कर रहे हो आप हमारे परिवार को स्वार्थी नहीं कह सकते, हमारे तो बहुत संगठन है। अरे भैया स्वार्थी कह नहीं रहे, जगत का स्वरूप ही स्वार्थी है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, हम कोई उनकी निंदा अपमान नहीं कर रहे, हम उनके लिए अपशब्द नहीं कह रहे, वे सब निश्चित तौर पर स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के सगे हैं, और आपको जो अपने दिखाई देते हैं तो आपके पुण्य का उदय है। जब तक आपके पुण्य का उदय है तब तक सब आपके अनुसार चलते हुए दिखाई देंगे, और जब आपके पाप कर्म का उदय होगा तो अपना सगा बेटा भी साथ छोड़कर चला जाएगा, वो भी साथ नहीं देगा। और तो क्या बात करें, घर की नारी को कहें तन की नाड़ी जाए, ये नाड़ी भी साथ छोड़ देगी, ये धड़कन भी साथ छोड़ देती है, तो उसकी क्या बात करें अपन। और सच बात ये है कि जब तक अपना स्वार्थ सत्ता है तब तक सब पूछते हैं, और जिस समय यदि स्वार्थ सदना बंद हो जावे तो कोई नहीं पूछता है, हम देखते हैं रोजाना वृद्धाश्रम खुल रहे हैं बहुत तेजी से, इंडिया में जगह जगह शहरों में वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं। कौन छोड़ने जाता है कि माता पिता को, उनके ही बच्चे। बोलो ऐसी ऐसी तक घटनाएं मिलती हैं, आपको जान करके आश्चर्य होगा। एक घटना ऐसी घट गई कि एक बड़े बेटे ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, उनको चिट्ठी लिखकर और ट्रेन में बैठा दिया कि आप ट्रेन से वहां उतरोगे तो छोटा भाई आएगा और आपको लेके चला जाएगा। वो स्टेशन पर उतरे, कोई लेने के लिए नहीं आया, एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया इंतजार करते हुए, प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे। वहां चाय वाला जो उनको सुबह से देख रहा था उसने आकर के पूछा कि क्या बात है, आप सुबह से बैठे हो, कहाँ जाना है? कि नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, वो बेटे का इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा लेने के लिए। बड़े बेटे ने ये एड्रेस और ये नंबर लिख करके भेजा है, आप यदि वो नहीं आए तो कहा था कि ये पर्ची किसी को दिखा देना, वो आपको पहुंचा देंगे। और पर्ची में कोई एड्रेस नहीं लिखा था, सिर्फ ये लिखा था कि इनकी व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप अपने नगर के किसी वृद्धाश्रम में इनको पहुंचा दें। बोलो आप, सच्ची घटना है, न्यूज़पेपर में पड़ी हुई। बड़े बेटे ने ट्रेन में बिठा करके भेज दिया, छोटा बेटा रहने के लिए लेने के लिए नहीं आया, कहाँ जाएं? अनपढ़ चिट्ठी पढ़ना जानते नहीं है, वृद्धाश्रम में भेज देगा। ये हाल है दुनिया का, ये समाज का ऐसा स्वरूप है। हमारे घर परिवार में आज ऐसी स्थिति नहीं है, ये हमारे पुण्य का योग है। लेकिन परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। क्या पता किसका मन बदल जाए, क्या पता कब हमारे पाप कर्म का उदय आ जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यदि परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो तो दोषारोपण नहीं करना, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है, उदय अपना खराब है। कि नहीं साहब बेटे की शादी कर दी, बहू ऐसी आई है और उसने भड़का दिया और इस वजह से ऐसा हो गया और परिवार में झगड़े करा दिए, किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है किसी का, अपने ही कर्म का दोष है। आप देखिए सीता का कितना सुंदर प्रसंग सबका सुना है, जंगल में छुड़वा दिया उसको गर्भवती अवस्था में, कहा तो 6 महीने तक युद्ध करके लाया था।
रामचंद्र जी,
हाँ, ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं?
रामचरितमानस सुनते तो किस तरह उसने डिसीजन लिया।
हाँ हाँ, वो है ना दादा का कथानक, सुना पड़ा होगा आपने शायद, नहीं पढ़ा? राम का ये क्या नाम है इसका, पश्चाताप, पश्चाताप सुना है आपने? हाँ, एक बुक है छोटी सी और एक सीडी वगैरह भी सुना करके चलाया होगा उसको। हाँ तो बहुत सुंदर है वो, 1 घंटे का है और कभी भी आप उसको सुन सकते हैं घर में सब लोग बैठ करके, किताब साथ में लेकर के, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा है पारिवारिक संगठन के लिए भी और रामचंद्र जी के मन का पश्चाताप, कैसा जगत का स्वरूप है, छोड़ दिया जंगल में, कौन करता है भला ऐसा, और क्या किसी न्यायाधीश को ये शोभा देता है, राजा को, प्रजा के साथ भी नहीं करे और वो तो पत्नी के साथ में, गर्भ में लवकुश है और जंगल में छुड़वा दिया। पता है उसने बीच में क्या तर्क किए सीता ने, जब अग्नि परीक्षा के लिए वो वापस आई, लवकुश के साथ में युद्ध हुआ, लवकुश बड़े हो गए थे, इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था और वो जब वापस जब युद्ध हुआ और पता लगा कि लवकुश हमारे ही बेटे हैं और जानकी जिंदा है, तो वापस लाने के लिए वे तैयार हो गए, वापस बुलाने के लिए तैयार हुए, लेकिन अग्नि परीक्षा पहले, फिर हुई अग्नि परीक्षा 25 साल बाद। पता है सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी और अग्नि परीक्षा देने पर अग्नि का जल हो गया, पुण्य के प्रभाव से, शील के प्रभाव से देवों ने अग्नि का जल कर दिया, या फिर द्रव्यानुयोग की शैली में कहें तो उन पुद्गल परमाणुओं की वैसी ही योग्यता थी, अग्नि के परमाणुओं की परिणमन की योग्यता, ये भी तो स्वाधीनता है ना, 4 जवाब हो सकते हैं, हमने 4 बातें पढ़ी है शास्त्र में, अलग अलग बातें, कोई प्रश्न करे सच्ची बात कौन सी है, कौन सी सच्ची, 4 सच्ची है। सरस्वानुयोग शैली में जब बात करते हैं तो कहते हैं देवों ने अग्नि का जल कर दिया, चरणानुयोग जब बात करता है तो आचरण की बात करता है, वो शील की महिमा गाता है, देखो अग्नि परीक्षा के समय उसके शील का प्रभाव ऐसा था कि अग्नि भी जल हो गई, शील की चर्चा करेगा। करणानुयोग उदय की बात बतलाएगा तो कहेगा उदय अच्छा था, उदय अच्छा होता है तो देखो बदल जाता है, और द्रव्यानुयोग कण कण की स्वतंत्रता की बात करता है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, कैसी स्वाधीनता है, कौन रोक सकता है इस पुद्गल के परमाणु को अग्नि से जल रूप परिणमन करने से। चलो अग्नि परीक्षा हो गई, अग्नि का जल हो गया, सीता पवित्र सिद्ध हो गई, पता है क्या तर्क किए सीता ने, मेरे को जंगल में छुड़वाना ही उपाय था, मेरी एक भी नहीं सुनी, क्या यही न्याय है तुम्हारा, ये उचित है ये बात? अरे जिस किसी को भी अपराधी घोषित किया जाता है और दंड दिया जाता है, कम से कम उसकी भी तो दलील सुनी जाती है कि भाई ये अपराध तुमने किया है या नहीं हुआ, क्या किया क्या हुआ, और अनजाने में, और मुझे नहीं रखना था तो एक बार मेरे से कह देते मैं चली जाती खुद, क्या यही उपाय था जंगल में छुड़वा देना, भयानक जंगल में शेर चीतों के बीच में, आश्रम में नहीं छुड़वा सकते थे, तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के नहीं रह सकती थी, आरिकाओं के आश्रम में नहीं रह सकती थी, और भी उपाय हो सकते थे, क्या यही उपाय बचा था आपके पास में? बहुत बातें कही उन्होंने, पश्चाताप के अंदर लिखी है, इतना मार्मिक है, पढ़ करके इतना आनंद आता है, लेकिन भाई क्या करे, उदय सीता का खराब था और निमित्त रामचंद्र जी को बनना था। सीता और रामचंद्र जैसे महापुरुष, इतिहास प्रसिद्ध बलभद्र जैसे व्यक्ति, आगामी भव में मोक्ष जाने वाली सीता, तद्भव मोक्षगामी रामचंद्र जी, उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है और उनके परिवार में ऐसी स्थिति हो सकती है, तो फिर हम हमारे परिवार का कैसे बात कर सकते हैं? हम तो कोशिश कर सकते हैं, हम तो भावना भा सकते हैं, और पता है ये तत्व ज्ञान ही एकमात्र शरण भूत है। जिन घरों में शांति दिखाई देती है उनके घरों में तत्व ज्ञान के कारण ही शांति है, बिगड़ने में 2 मिनट नहीं लगती। जहाँ तत्व ज्ञान उतरा है अंदर में, जहाँ ये बात समझ में आती है कि अरे भैया कितना सा जीवन है, अलग अलग जगह से आकर के विश्राम करने के लिए रुके हैं यहाँ, सबको अलग अलग दिशाओं में उड़ जाना है, क्या भरोसा है, किसका अभिमान करें, किसका गर्व करें? तो एकत्व भावना में क्या कह दिया गया कि कर्म का उदय अकेले अकेले ही भोगना पड़ेगा। मेरे यदि हार्ट अटैक हुआ है तो उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, मेरे यदि कैंसर हो गया है तो उसकी तकलीफ मुझे ही भोगनी पड़ेगी। परिवार वाले भागदौड़ कर सकते हैं, डॉक्टर के ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन जो उस कर्म के उदय की वेदना है वो तो अकेले कोई भोगना पड़ेगा, उसमें कौन साथ दे सकता है? क्या लिखा, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कबू इस जीव को साथी सगान कोए। आप अकेला अवतरे माने जन्म अकेला हुआ है, और मरे अकेला होए, मरेगा भी अकेले ही, अकेले जन्म लिया था अकेले ही मरेगा, जन्म के समय कोई हमारे साथ नहीं आया था, मरते समय कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, या कब हुए इस जीव को साथी सगान हुए। सब जन्म अकेले मरण अकेले, क्या करें, क्या क्या बात बतलाएं, भोजन अकेले कहें, सोता अकेला है ये कहें, खाता अकेला है ये कहें, 2 बातें कह दी ना, एक जीवन की प्रारंभिक अवस्था, एक जीवन की अंतिम अवस्था, स्टार्टिंग और एंड, जब दोनों ही बातें पकड़ ली तो पूरा ही आ गया ना पकड़ में। आप क्या समझ रहे हैं कि जन्म और मरण दोनों ही अकेले अकेले होता है, बाकी जिंदगी भर तो साथ रहते हैं? जिंदगी भर कहाँ साथ रहते हैं? मतलब जिन्हें आप अपना जीवन साथी कहते हैं क्या वे जिंदगी भर साथ रहते हैं? आप यहाँ आप बिजनेस ऑफिस चले जाते हैं वे घर में रहते हैं, आप कौन से रूम में रहते हैं वो कौन से रूम में रहते हैं, आप कौन सी चेयर पे बैठते हैं वो कहाँ बैठते हैं, आपको क्या खाना पसंद है वो क्या खाते हैं, का क्या साथ है बताओ मेरे को? ये तो भ्रम से साथ मानता है, ये इसकी मिथ्या मान्यता है। तो एकत्व भावना के माध्यम से पर से एकत्व तोड़ाने की बात कही, पर से संबंध तोड़ाने की बात कही, और अकेले अकेले ही कर्म का फल भोगने की बात कही। ये बात कुछ ऐसी नहीं है कि समझ में नहीं आ सके, समझ में तो आती है भाई, जब बच्चा सामने जवाब देता है तो हमारे को समझने में देर नहीं लगती, लेकिन मोह इतना हावी होता है कि हम समझ ही नहीं पाते। आपको लगता है बच्चा कितना आज्ञाकारी है, कितना हमारे हिसाब से चल रहा है, लगता है हमारे को ऐसा बहुत आज्ञाकारी है, अपने हिसाब से चलता है साहब, जैसा हम कहते हैं पंडित जी बिल्कुल वैसा ही, आज तक उसने कभी हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। अच्छा, आप एक आध बार उसके विपरीत बोल करके देखो तो पता लगेगा, ये तो उसकी डिमांड, उसकी इच्छा या आपकी इच्छा और उसकी भावना, इन दोनों का परस्पर में मेल होता है तो आपकी आज्ञा अनुसार चलता हुआ दिखाई देता है। एकाध वाक्य भी उसकी मर्जी के खिलाफ बोल करके देखो तो पता लगेगा वो कितना आज्ञाकारी है, तुरंत पलट के सामने जवाब देता है। अभी तो क्या है, वो कहता है ना पिक्चर देखने चले जाऊं और आप कहते हो कि हाँ बेटा जाया, तो आपको लगता है कितना आज्ञाकारी ये पूछ के जाता है, हमने कहा इसलिए चले गया, आप मना करके देखो। अंदर में कषायों के बारूद बिछे हैं, ऐसा बारूद बिछा हुआ है, थोड़ी सी चिंगारी दिखाने की देर है, बस विस्फोट होते हैं, थोड़ी सी चिंगारी दिखाओ आप, फिर कषाएं निकल करके सामने आती है, फिर विरोध भाव होता है, अब शब्द कहता है, सामने जवाब देता है, कुछ का कुछ कहने लगता है कि नहीं नहीं आप तो ऐसे ही मना करते रहते, मैं तो जाऊंगा। अब क्या हुआ, पहले प्यार से बोलता है, रिक्वेस्ट करके बोलता है, उससे बात बन जाए तो ठीक, नहीं तो जाना तो है ही, तेज आवाज में बोल करके जाता है, नाराज होकर के जाता है, मैं तो जाऊंगा बस आज तो, मेरे को जाना है, मैंने कह दिया पहले फ्रेंड से मेरे को जाना है, समझो आप कुछ नहीं, शर्म समझ में आ जाती है हमारे को बात। देखिए यहाँ क्या पंक्तियां लिखी एकत्व भावना के संदर्भ में, मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आके, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मैं एकाकी, मैं अकेला हूँ, और एकत्व लिए सभी आते, सब अकेले अकेले ही आते हैं, जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जिए एकला, अकेला ही जाएगा। ये साथ साथ की भावना बात है, आप सोचो कैसा साथ से आते हो आप, आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए आप कैसा साथ चाहते हैं, कि नहीं साहब हमारे सुख दुख में साथ चाहते हैं, हम परिवार हमारे सुख दुख में साथ दे, तो कैसा सुख दुख में साथ दे, आपके सर दर्द हो तो परिवार वालों के सबके सर दर्द हो, कैसा साथ चाहते हैं आप, आप बीमार पड़े तो आपको ये चाहिए कि मेरे फीवर हो गया है तो सबके फीवर हो जाए, ये चाहते हैं आप, तो तभी साथ साथ देने का मतलब क्या, कैसा साथ चाहते हैं, हमारे मरण के साथ साथ हमारे पूरे परिवार का मरण हो जाए, पूरा कुटुंब खत्म हो जाए, क्या आप ऐसा मरण में साथ चाहते हैं, आप कैसा साथ चाहते हैं, हमारे जन्म के साथ ही सबका जन्म हुआ होता तो क्या होता, फिर भी हमारे माता पिता नहीं होते भाई बहन होते, पुत्र पुत्री नहीं होते भाई बहन होते, और ये साथ साथ जन्म मरण की भावना तो निगोद की भावना है। जो लोग कहते हैं ना कि जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म तक हमें आपका साथ चाहिए, ये जन्म जन्म का साथ माने निगोद का साथ, साथ में जन्म होता है साथ में मरते हैं, ऐसी अवस्था निगोद में दिखाई देती है। तो एकत्व लिए सभी आते, तन को साथी समझा था, धन को साथी समझा था, बोलो वही प्राण घातक हो जाता है, जिस धन को हमने सहयोगी समझा वही धन हमारे लिए मौत का कारण बन जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। ये सब वैराग्य भावनाएं हैं, वैराग्य के लिए है सारी चर्चाएं, अनित्यता का चिंतन, आशरणता का चिंतन, संसार माने संसार के स्वरूप का चिंतन, एकत्व भावना माने पर अपने नहीं है, घरवार महल मकान अपने नहीं है, स्त्री पुत्र अपने नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, सब अकेले अकेले हैं। ये एकत्व भावना का चिंतन यदि आपको दुख देने वाला लगता हो तो समझना आप उसका यथार्थ चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपके मन में ऐसा लगता हो अरे आप कितना स्वार्थी है, मैं तो सच में बड़ी आपने कैसी बात कह दी, मैं तो बहुत दुखी हो गया, मैं तो उनको अपना मानता था, आज समझ में आई कितना स्वार्थी है और ये दुखी हो रहा है, खेत खेत में हो रहा है, फिर नहीं नहीं बारह भावनाएं सुख प्रदान करने के लिए होती है, समता भाव जागृत होना चाहिए, वैराग्य भाव जागृत होना चाहिए, अंदर में वैराग्य भाव हो, अंदर में शांति हो, सहजता हो, अरे एकत्व में सुंदरता है, एकत्व में शांति है, अकेलेपन में सुख है, पराधीनता में दुख है। आप यदि अकेले कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं गए हैं, आप चाहे जहाँ रह सकते हैं, चाहे जहाँ उठ बैठ सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई भी आपके साथ में गया है तो इसका मतलब ये कि आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा कि उनको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। उनको कहीं जाने का मन है, आपको नहीं है, वो थक रहे हैं, उनसे चला नहीं जा रहा है, आप मतलब पराधीनता जहाँ है, जहाँ साथ है वहाँ तकलीफ है, और जहाँ अकेलापन है वहाँ सुख है। समय सार की दूसरी तीसरी गाथा में तो वो एकत्व पने के गीत गाए हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी पांचवी गाथा में समय सार में प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं तो एकत्व की चर्चा करूंगा। एकत्व की भावना तो भाव सिद्धालय में जाता है, वहाँ अकेला ही जाता है। कैसा कौन कौन चलेगा, चलो साथ में। आपको पता है सीता की अग्नि परीक्षा हुई, सब कुछ हो गया, दीक्षा ले ली, फिर वो स्वर्ग में चले गई। पीछे से रामचंद्र जी ने दीक्षा ली, मुनि बन गए। अब रामचंद्र जी के दीक्षा लेने के पश्चात सीता स्वर्ग में है, उपसर्ग करने के लिए आई रामचंद्र जी के ऊपर। ध्यान से हटाने के लिए। और क्या बोलती थी उपसर्ग करते हुए कि अरे क्यों आप ध्यान लगा करके जल्दी मोक्ष जाना चाहते हो, हम साथ में चलेंगे। अभी आप ध्यान से बाहर आओ, स्वर्ग में आ जाना, फिर अपन दोनों जब मनुष्य बनेंगे तो फिर अपन साथ में मोक्ष जाएंगे, साथ में दीक्षा लेंगे। क्या साथ, किसका साथ? मोक्ष में कोई साथ में नहीं जाता, अकेले अकेले जाना पड़ता है, किसी का साथ नहीं है। बाहर के कार्यों में साथ भले ही हो तो हो, लेकिन अंदर अपने स्वभाव में जाने के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं साथ में बैठ करके ध्यान करते हैं, और आजकल तो ध्यान के केंद्र बन गए हैं, बहुत ध्यान के लिए हॉल बन गए हैं जहाँ सब लोग सामूहिक बैठ करके ध्यान करते हैं। ध्यान जैसी एकाकी चीज जो एकांत में हुआ करती थी, जो अकेले में हुआ करती थी, जो अपने व्यक्तिगत इसके लिए हुआ करती थी, आज उसको भी सामूहिक माध्यम बना लिया गया है। क्या हो गया है? आप किस चीज का ध्यान करते हैं? अपने सर का ध्यान करो, अपने इसका ध्यान करो, अपने मस्तक पे ध्यान लगाओ, अपने पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करो, फिर ऐसा अनुभव करो, देखो आप शिथिल हो रहा है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है बिल्कुल हल्का छोड़ दो आप शरीर को, ऐसा हो गया, आप महसूस करेंगे बहुत निर्भर महसूस करेंगे, और देखो आपको आनंद आएगा धीरे धीरे। ऐसे कि शरीर का ध्यान नहीं करना है भैया, आत्मा का ध्यान करना है। क्या शरीर से ध्यान हटाना है? तुम शरीर का ध्यान कराते हो, हमें कह रहे हैं मुक्ति का मार्ग आत्म ध्यान का, आत्म ध्यान से होता है, शरीर के ध्यान से नहीं। इस शरीर से तो ध्यान हटाना है, तुम निरंतर ये कहते हो शरीर का ध्यान रखो, शरीर का ध्यान रखो। कई लोग ऐसा मिलते हैं जो ये कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ठीक है तो आप धर्म ध्यान कर सकते हो। हम ये कहते हैं शरीर की जरूरत नहीं है, मुक्ति प्राप्ति के लिए शरीर की पराधीनता नहीं है। शरीर साथ देता हो चाहे नहीं देता हो, दृष्टि शरीर से हट गई तो काम हो गया। शारीरिक वेदनाएं कोई दुख देने में समर्थ थोड़ी ना हो सकती है, दृष्टि हटानी है शरीर से, इतना सा काम करना है हमारे, जिससे दृष्टि हट गई काम हो गया। देखिए आप क्या लिखा, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। अब देखिए जब इतनी बात कही, सब स्वार्थ के सगे हैं, परिवार स्वार्थी है, अकेले अकेले ये सुख दुख को भोगता है, जब इतनी सब बातें कह दी एकत्व भावना के माध्यम से, तो फिर तुरंत ये नई बात कहता है। क्या कहता है कि देखो भाई आपकी सब बात सही है, सब स्वार्थी हैं, साथ नहीं देता, अपना साथ नहीं देगा, और आपने कहा कि सामने जवाब देता है तो वो भी हम प्रैक्टिकल महसूस करते हैं, ये भी सब देखते हैं हम, सारी बातें सही है, लेकिन फिर भी पंडित जी आखिर हैं तो अपने ही ना। अरे बच्चा सामने जवाब देता है तो क्या हुआ, है तो अपना ही। आज काम तो वही आएगा। कई बार मेरे को ऐसा आश्चर्य लगता है जब लोग इस प्रकार की बात कहते हैं कि बेटा कहना तो नहीं मानता है लेकिन क्या करें साहब, काम तो यही आएगा। एक गिलास उठा करके पानी तो पिलाता नहीं है लेकिन फिर भी काम तो यही आएगा। अब मुझे पता नहीं है, समझने नहीं आता क्या काम आएगा। जो आपकी सेवा नहीं करता, जो आपकी सुनता नहीं है, जो आपको भोजन नहीं कराता, जो आपको एक गिलास उठ करके पानी नहीं पिला सकता, फिर भी आप कहते हैं आखिर काम तो यही आएगा, तो मुझे तो लगता है लास्ट में किता के आग लगाने के काम आएगा, और क्या काम आएगा। आपको ऐसा लगता है कि आखिर हैं तो अपने ही, तो फिर आचार्यों को आगे एक और भावना लिखनी पड़ी जिस भावना का नाम है अन्यत्व भावना। उसमें ये कह दिया कि आपको ये लगता है कि ये है तो अपने ही, हम कहते हैं ये अपना नहीं है, वो अपने कैसे हो सकते हैं। अन्यत्व भावना में क्या कहा, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। बोलो, घर संपत्ति पर प्रकट ये पर है परिजन लो, सारे के सारे परिजन सब प्रकटी हैं, सब अलग हैं, सब चौड़े ही तेरे से अलग दिखाई देते हैं। तुझे लगता था कि मेरे तो हैं, तुझे लगता था अपने तो हैं, तुझे लगता था आखिर ये तो मेरा ही है। अरे भैया तू किसे अपना कह रहा था, इसे अपना कह सकता है क्या तू? ये भी साथ छोड़ करके चला जाता है, ये भी लंबे समय तक नहीं रहता है। जल पे जो जिए तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुतरावा। दूध और पानी की तरह एक में एक दिखाई देता है शरीर और आत्मा। जल पे, पे मतलब दूध, जल पे जो जीव और तन मेला मिले हुए दिखाई देते हैं। पे भिन्न भिन्न जन्म से लेकर मरण तक एक समय के लिए भी आप इस शरीर से अलग नहीं हुए, फिर भी ये भिन्न भिन्न है। तो कह रहे हैं ये तो चौड़े ही अलग दिखाई दे रहा है, आप ये कह रहे हो कि ये मेरा है और हम कह रहे हैं कि वो वहाँ है और आप यहाँ हो, साफ साफ ही अलग दिखाई दे रहा है ना। धन यहाँ रखा रहता है, मकान यहाँ रखा रहता है और हम चले जाते हैं 7 दिन के लिए घूमने के लिए, 15 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है ये बात, हमारे साथ साथ तो नहीं जा सकता। इनकी पृथकता, इनकी भिन्नता, इनका अलगपना, ये तो हमारे को स्पष्ट ख्याल में आ रहा है। प्रकट युद्ध साफ साफ ही अलग दिखाई दे रहे हैं। ये धन जो आज हमारे पास में है ये कल किसी और की जेब में होगा, जो नोट आज मेरी जेब में है वो कल किसी और की जेब में होगा, जो आज मेरा है वो कल किसी और का हो जाएगा। ये मकान जिसे मैं अपना कहता हूँ, इसे कुछ समय पहले कोई और व्यक्ति अपना कहते थे, उससे कुछ समय पहले कुछ और अपना कहते थे, और उसके कुछ समय पहले कोई और अपना कहते रहे। ये धरती तो किसी न किसी की है ही ना, धरती आज तक किसकी हुई है? हमें इस प्रकार के चर्चाएं आती है, सुनते हैं हम, जो बाहुबली को ऐसा विकल्प चलता रहा कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, ऐसा नहीं, भूमि तो किसी की होगी ही ना, भूमि तो हमेशा ही राजा की होती है, इसमें कौन सी नई बात है बताओ मेरे को। जब भी कोई मुनि दीक्षा लेते हैं तो किसी भी जमीन पर तो खड़े होते हैं, अधर तो नहीं रहते हैं, और जिस जमीन पे खड़े होते हैं तो जमीन तो राजाओं की होती है, उसमें क्या दम है, किसी का तो राज्य होगा ही, जिसका राज्य है उसकी जमीन है, वो मालिक है उसका, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जमीन आज तक कभी किसी की नहीं हुई, ये मकान आज तक कभी किसी का नहीं हुआ, अपना अपना कह करके न मालूम कितने चले गए। ये जो क्षेत्र है ना, जिस क्षेत्र में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र में अनंत जीवों का मालिकाना हक अतीत काल में रहा है, अनंत का, एक आध दो नहीं कह रहा हूं मैं, आपको ये लगेगा कि साहब 4 पीढ़ी से है ये तो हमारा, अरे 4 पीढ़ी बाद में, उससे पहले कौन था 4 पीढ़ियों पहले? किसी से तो लिया होगा, किसी का तो होगा, और उससे पहले कोई रहता होगा, اس سے پہلے کوئی اور رہتا ہوگا کہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, اس سے پہلے تو جنگل تھا. ارے پشو پکشی رہتے ہوں گے, جانور رہتے ہوں گے, اس سے پہلے جنگل ہوگا, اس سے پہلے پھر مکان ہوں گے. یہ تو اتنا سمے ہے, بدلتا رہتا ہے, سب پریورتن ہوتے رہتے ہیں. جہاں مکان ہوتا ہے وہاں شمشان بن جاتے ہیں, جہاں شمشان ہوتے ہیں وہاں ریگستان ہو جاتے ہیں, جہاں ریگستان ہوتے ہیں وہاں سمندر ہو جاتے ہیں, جہاں سمندر ہوتے ہیں وہاں پروت کھڑے ہو جاتے ہیں, جہاں پروت ہوتے ہیں وہاں نگر بس جاتے ہیں. یہ تو سرشتی کا سوروپ ہے, اسی پرکار کا کوئی دم نہیں ہے اس میں. کوئی جگت کا پردیش ایسا نہیں ہے جس پردیش پر ہمارا جنم مرن نہیں ہوا ہو. اس پورے لوکاکاش میں ایک ایک پردیش ایسا ہے جس پردیش پر ہمارا جنم مرن ہوا ہے. ہر کھیتر کو ہم اپنا اپنا کہتے ہوئے چلے گئے, پر کھیتر کو تو اپنا مانا لیکن سو کھیتر میں کبھی نہیں آئے. اپنا جو اسنکھیات پردیشی سو کھیتر ہے, اپنا جو چیتنیہ بھون ہے جس میں انت گن نواس کرتے ہیں, جو واسطو میں اپنے ہیں, ان میں اپنا پن ہم نے کبھی نہیں کیا. پر میں اپنا پن کر کے ہاں میں اپنے سے چلا گیا. جو اپنا نہیں اس کے اپنے پن میں جیون چلا گیا. پورا کا پورا جیون جو اپنا ہے ہی نہیں اس کے اپنے پن میں چلا گیا, اور پر میں اپنا پن کر کے میں اپنے آپ سے چلا گیا. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم پر میں اپنا پن کر کے. تو انیتو بھاونا, یہ جو پانچویں نمبر کی بھاونا ہے, اس بھاونا کے مادھیم سے بہت سرل شبدوں میں یہ بات کہہ دی کہ تن دھن کو ساتھی سمجھا تھا پر یہ بھی چھوڑ چلے جاتے. نہ شریر کام آئے گا نہ پریوار کام آئے گا, اور شریر تمہارا نہیں ہے تو باہری وستویں تمہاری کیسے ہو سکتی ہے. اس بات کو اپنے ہردے میں بیٹھا لینا چاہیے. دیکھیے ایسی پنکتیاں لکھی ہے, میرے نہ ہوئے یہ میں ان سے اتی بھن اکھنڈ نرالا ہوں, نج میں پر سے انیتو لیے نج سمرس پینے والا ہوں. کتنے سندر بات کہہ دیے. ایکتو بھاونا میں کہا تھا کہ آخر میرے تو ہیں. ایکتو کے بعد اس نے ترک کیا تھا. ایکتو میں کہا تھا اکیلے اکیلے ہیں, اس نے ترک کیا بھلے ہی اکیلے اکیلے ہوں. ایکتو میں کہا تھا کہ سوارتھی ہیں, تو اس نے کہا بھلے ہی سوارتھی ہوں, ہیں تو اپنے. تو انیتو میں ترنت کہہ دیا کہ کسے اپنا مان رہے ہو, کہ جنم سے مرن تک ساتھ دینے والا, ساتھ دکھائی دینے والا شریر بھی تمہارا نہیں ہے. جب انیتو میں ایسی بات کہی, اس پرکار کی چرچا انیتو بھاونا کے مادھیم سے کہی گئی, تو پھر یہ ترنت ایک اور ترک کرتا ہے. کیا ترک کرتا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو آپ؟ یہ شریر میرا نہیں ہے, یہ تو میرا ہی ہے. تو انیتو بھاونا میں کہا جہاں دیہ اپنی نہیں, انیتو بھاونا میں کہا کہ شریر ہی تیرا نہیں ہے, تو پر کی کیا بات کرتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کیسے نہیں ہے میرا شریر, اس شریر کے پرتی اپنا پن کیسے توڑ دوں میں, اتنا مینٹین کر کے چلتا ہوں, اتنا سنبھالتا ہوں میں, یہ تو میرا ہی ہے. میں چاہوں تو اٹھ جاؤں, چاہوں تو بیٹھ جاؤں, جیسے جو کام کروں میں, یہ میرا نہیں ہے, یہ کیسے کیسے ہو آپ؟ تو پھر اس کو سمجھانا پڑا کہ شریر کے پرتی اپنا پن توڑنا ہو تو ایک بار شریر کا سوروپ دیکھ لے. آشو کی بھاونا لکھی آگے, تیرے کو ایسا لگتا ہے نا کہ میں اتنا سندر ہوں, جب مرر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میرے جیسا سندر کوئی دوسرا نہیں ہے. تجھے اپنے اس دیہ کے سوروپ کی خبر نہیں ہے. جو چیزیں اچھی لگتی ہے ان میں اپنا پن ہوتا ہے, اور جو خراب لگتی ہے ان سے اپنا پن توڑنا چاہتا ہے. یہ سوروپ ہے جگت کا ایسا. جو چیز اچھی لگتی ہے اسے اپنا بنانا چاہتا ہے, اسے پراپت کرنا چاہتا ہے. جو بری لگتی ہے, خراب لگتی ہے, اسے دور ہٹانا چاہتا ہے. تن کے پرتی جو تیرا اپنا پن ہے, یہ کہہ رہے ہیں ایک بار تو تن کے سوروپ کے بارے میں وچار کر لے. شریر کے سوروپ کے بارے میں وچار کیا تو شریر کے پرتی اپنا پن ٹوٹے بنا نہیں رہے گا. کیا لکھا پھر؟ दिसे चामचा दरमणी हाड़ पिंजरा देह भीतर आसम जगत में और नहीं इनके। दुनिया में खराब से खराब वस्तुएं हमारे सामने लेकर के आओ, तलाश करो आप, सर्च करो आप, रिसर्च करो, जितनी खराब से खराब वस्तुएं आपको दुनिया में दिखाई देती है उनमें सबसे ज्यादा खराब यदि कोई वस्तु दिखाई देगी तो वो है आपका शरीर। इससे ज्यादा अपवित्रता दुनिया में कहीं नहीं है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। ये देह का स्वरूप है, सुंदर दिखाई दे रही है, चमकदार दिखाई दे रही है, दिपे चाम चादर मड़ी, दिपे वह दीप्यमान होते हुए चमक रही है, ऐसी चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो कहते हैं कई बार कि वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, गोबर है, गंदगी है, विष्ठा है, और ऊपर से गोल्ड का वर्क चढ़ा हुआ है, कितने सुंदर दिख रही है। अरे तू परत उतार करके देख अंदर क्या है, पता लगेगा। ये जो शरीर दिख रहा है ना, जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जो तेज दिखाई दे रहा है चेहरे पर, जो शाइनिंग दिखाई दे रही है, जो गोरा चिकना रूप तेरा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है दम इसमें, ये ऊपर की एक परत उतरे तो अंदर ऐसा स्वरूप है कि आंखों से देखना पसंद नहीं करे। ये है अंदर, एक मक्खी के पंख बराबर, पतले सा पंख, मक्खी का पंख कितना बारीक होता है, इतनी सी परत ऊपर से उतर जाए तो अंदर जो भरा है वो आंखों से देखना पसंद नहीं करे। ये स्वरूप है शरीर का। भरोसा नहीं है तो आप देख लीजिए, जिसमें जो चीज भरी होती है वो बाहर निकलती है, अंदर से जो निकलता है उससे अनुमान लगाया जाता है कि अंदर क्या भरा है। बर्तन में से कोई चीज ढुल रही है तो वही तो ढुलेगी ना जो अंदर भरा होगा। श्रीमद जी के साथ में एक ऐसा प्रसंग बना, किसी व्यक्ति ने ऐसा पूछा उनसे कि भाई ये जो है प्रश्न तो ध्यान नहीं मेरे को, सुख शांति का उपाय क्या है। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि आप यदि बाजार से एक हाथ में कांच का बर्तन और दूसरे हाथ में घी का बर्तन लेकर के आ रहे हैं और आपके यदि ठोकर लगी तो आप पहले किसे संभालेंगे। कहते हैं ऑब्वियसली घी के बर्तन को संभालेंगे, छाछ क्या फर्क पड़ गया। तो उन्होंने कहा बस ऐसे ही तुम शरीर को संभालना छोड़कर आत्मा को संभालो, लेकिन गलती ये है कि आत्मा जो घी के समान है और शरीर जो छाछ के समान है, तो तुम्हारे कैसी भी परिस्थिति बनती है तुम घी की तरफ तो ध्यान देते नहीं हो, मक्खन की तरफ तो ध्यान देते नहीं हो और छाछ को संभालने में लगे रहते हो, दुखी होगी। कोई व्यक्ति बाजार से कुछ लेकर के आ रहा है, मान लो एक दूध का भरा हुआ बर्तन लेके आ रहा है, छोटा बच्चा है और ठोकर लग गई और दूध धुल रहा है, तो किसी ने अरे बेटा देख करके चलो, फिर ठोकर लग गई दूध धुल रहा है, अरे नहीं नहीं अंकल जी क्या बात कर रहे हैं, वो तो वो दूध वाले ने जो पानी मिला दिया था ना वो पानी पानी धुल रहा है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता भाई साहब, उस बर्तन में जो चीज भरी हुई है वही ढुलेगी, बर्तन में जो है भरा हुआ वही निकलेगा बाहर। हम कह रहे हैं शरीर में से क्या निकलता है बाहर, शरीर में से यदि ब्लड निकलता है, मांस निकलता है, मलमूत्र निकलता है, पसीना निकलता है, तो अंदर की गंदगी और विकार निकल रहा है, इसका मतलब वो अंदर भरा है। आप क्या समझ रहे हैं, अंदर पेट में भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, अंदर गंदगी भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो कभी निकलती, अरे निकलती है तब तो पता लगता है, जब तक पता नहीं लगा है तब तक भी अंदर तो भरी है ना। दौलत राम जी ने लिखा छेड़ाला की पांचवी ढाल में, आठ नंबर का छंद है, पल रुधिर राध मल थैली की कस वसा दिते मैली, नव द्वार वहे घिनकारी हस देह करे किम यारी। इस देह के साथ में क्या यारी करता है, इस देह के साथ में क्या अपनापन करता है, इस देह के साथ में क्या मित्रता का भाव रखता है। ये देह, ये शरीर, ये मित्रता करने योग्य नहीं है, ये दोस्ती करने योग्य नहीं है। नौ द्वार भय घिनकारी, शरीर में से नौ नौ दरवाजे ऐसे हैं जिनके माध्यम से घृणा करने वाले पदार्थ ही बहते रहते हैं। मुख से कुछ निकल जाए, हाँ ऐसी स्थिति शरीर की, पल भर के लिए कोई चीज हमने खाई, मान लीजिए अच्छा गुलाब जामुन थे, रसगुल्ले थे, अच्छी मिठाई थी, बिल्कुल शुद्ध बनी हुई, घर की बनी हुई, प्रासुक पवित्र, खाने योग्य, बहुत सुंदर स्वादिष्ट आपके सामने प्लेट में आई, और आपको जैसे ही खाने का मन हुआ आपने उठाया, अपने मुख में रखा, मुख में रखने के बाद में आपको ये ध्यान आया अभी तो पेट भरा हुआ था, एक काम करते हैं थोड़ी देर बाद खाएंगे, आप उसको निकाल करके वापस प्लेट में रख सकते हैं, चार घंटे बाद में खाएंगे, फ्रिज में रख लेते हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, कितनी देर के लिए गया है मुंह में। जो वस्तु समझिए आप 1800-1200 रुपए किलो के बादाम हैं, पल भर के लिए शरीर के संपर्क में आए और क्या हालत हो गई उसकी, और यदि वो कुछ देर रह लेता और शरीर के साथ में, ये बादाम और मिठाइयां बहुत महंगी महंगी, कुछ देर दो चार घंटे, दो घंटा अंदर पेट में चला जाए, रह जाए, और फिर वोमिटिंग होकर के बाहर निकले, अब क्या बात कर रहे हो आप। और छह आठ घंटा बाद में पेट से निकले तो किसने किया ये सब। इसलिए हम कहते हैं कई बार कि यह शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है, मल इसमें कुछ भी रॉ मेटेरियल डालो, फिनिश गुड्स क्या निकलेगा, मल निकलेगा, विष्ठा निकलेगी। बोलो आप, कितना भी अच्छा से अच्छा पदार्थ खाओ, बोलो किसी व्यक्ति ने सड़ा हुआ भोजन किया और किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा भोजन किया, क्या बहुत महंगा, बोलो विष्ठा में क्या फर्क है, एक जैसी है कि नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, ये तो 1000 रुपए किलो से, अरे बात मत करो, देह के बारे में कह रहे हैं। और फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सब बातें प्रकट अनुभव में आने के बावजूद भी, नहाया हुआ है, शुद्ध है, पवित्र है, इत्र लगा लिया है, उसके बावजूद भी पहन करके उतारे हुए कपड़े, पहन करके उतारे हुए वस्त्र वो दोबारा पहनने में नहीं आते, ऐसा लगता है कि ये खराब हो गए। सारे जगत में जल को पवित्र कहा जाता है, जल के समान शीतल पवित्र कौन है दुनिया में, जल तो बहुत पवित्र है, पानी के समान पवित्र कौन है, लेकिन वो पानी भी इस शरीर के टच हो जाए अपवित्र हो जाता है। आप नहा करके निकले हो, बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल पसीनों में नहीं है, अब हम कह रहे हैं दोबारा अंदर जाइए और एक बार नहाइए, और हमारे बदन से टच होकर के जो पानी निकलेगा वो पानी तो पवित्र है ना, आप पी सकते हैं उसे। मैं पसीनों में थे, गंदे थे, दिन भर के नहाए हुए नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहा धोकर के बाहर निकले थे, बिल्कुल धुले साफ थे आप बिल्कुल, और फिर पानी शरीर के टच हुआ, अब वो पानी पीने योग्य है क्या, नहीं है। सिर्फ पानी जैसी पवित्र चीज भी इस बॉडी के टच होने मात्र से अपवित्र हो जाता है, आप देखें तो सही देह की अपवित्रता का क्या स्वरूप है। फिर भी लेकिन क्या करता है, समझ में नहीं आती बात, करता क्या है वो देखो आप, क्या लिखा यहाँ, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। अशुचि भावना, कितनी मार्मिक बात लिखती है, कहाँ जा रहा है हमारा जीवन? उठना बैठना, खाना पीना, सोना, नहाना धोना, सब कुछ, पूरा का पूरा जीवन शरीर के लिए जा रहा है, सब कुछ शरीर के लिए कर रहा है, आत्मा की खबर नहीं है, और पड़ोसी के लिए अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन के क्षण बर्बाद कर रहा है। कितना बहुमूल्य है ये जीवन हमारे को मिला है, ये तन के लिए मिला है, लेकिन सब कुछ तन खा जाता है। तन खा बोलते हैं ना, तन खा मिलती है, तन खा मतलब पगार, तन खा माने तन जिसको खा जाए उसका नाम है तन खा। वेतन वेस्ट हो जाए जो तन पर, उसका नाम वेतन। और कितना भी आए लेकिन लगता है कम आई कमाई है ना, स्वरूप दिखता है अपने को, कितना भी हो कम आई, और बढ़ गई इनकम तो भी क्या कहता है इनकम। जो आता है वो कम ही दिखता है, जिसके श्रृंगारों में मेरा सजाने के लिए, संवारने के लिए, शरीर काला कैसे पड़ गया है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ जाए हैं, बाल कैसे सफेद होने लग गए, दिन रात लगा रहता है कि नहीं नहीं ये चले जाएंगे तो मैं कैसा दिखूंगा। आपने प्रयास नहीं किया मुकुंद भाई, बाल जा रहे थे तो थोड़े बहुत तो किए होंगे कुछ तो, कभी कभी विकल्प तो आता है। आप चिंता नहीं कि मैं भी आप ही की लाइन में लग रहा हूँ हमारे भी जा रहे हैं सब हमारे रोकने से रुकते नहीं है भाई। तुम दिन रात विकल्प करते रहो, दिन रात कोशिश करते रहो तो भी हमारी चलती नहीं है। जिस पर हमारी बिल्कुल नहीं चलती है जबरन चलाना चाहते हैं उसके ऊपर। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, बहुत बहुमूल्य जीवन घुल जाता, और देह कैसी है कि अत्यंत अशुचि है और जड़ है, और मैं कहता हूं कि मैं चेतन हूं। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता हो सकता है? मैं चेतन और शरीर अचेतन, दोनों की जाति अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है, एक का स्वरूप दूसरे के स्वरूप से मिलता नहीं है, और मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि देह के प्रति अपनापन करके बैठा हूँ, इसको ही सब कुछ मान करके बैठा हूँ मैं। बहुत अपनापन है शरीर के प्रति हमारा, लेकिन ये शरीर के प्रति हमारा अपनापन ये वन साइड लव है, एक तरफा प्यार है ये, जो निश्चित तौर पर दुख ही देने वाला है। हम शरीर से कितना प्यार करते हैं, शरीर भी थोड़ा बहुत अपने को अपनापन करता होगा, बोलो आप कैसा जगत का स्वरूप नहीं लगता है अपने को। आप किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो, किसी को बहुत चाहते हो, और वो आपको बिल्कुल नहीं चाहे तो आप दुखी होते, अपने दुख का कारण है। हम कह रहे हैं आप पूरा का पूरा जीवन आपने जिसके लिए समर्पित कर दिया, ये शरीर को आपकी रंच मात्र परवाह नहीं है, ये शरीर आपकी रंच मात्र नहीं सुनता, और ऐसा कृतघ्नि है। कृतघ्नि मतलब जानते हैं, कृतघ्नि माने
जो उपकार का कुछ सोचता
है, हाँ हाँ, जो उपकार न माने, जो उपकार का बदला अपकार से दे, तो कृतघ्नि। शरीर का कितना उपकार किया हमने, मिलाया झुलाया खिलाया, तेल मालिश की, एक्सरसाइज की, घूमने के लिए गए, मॉर्निंग वॉक के लिए गए, व्यायाम किया, अच्छे से अच्छा इसको पहनाया उड़ाया, सब इसके लिए अच्छा अच्छा किया, बट इसने हमारे लिए रंच मात्र परवाह नहीं की, और लास्ट समय ऐसा आया कि छोड़ के और चला गया। और कितना भी संभालो, इस शरीर का तो ये कहना है कि तुम कितनी भी कोशिश करो, जब समय आएगा तो आंखें भी खराब होगी और कान भी जवाब देंगे, घुटने भी जवाब देंगे। आप कितना भी गर्व करने का प्रयास करोगे, सामने मेंटेन करके चलता हूँ, मैं संभाल करके चलता हूँ, इस पर मेरी बहुत चलती है, लेकिन शरीर ये कहता है कि कोई बात नहीं, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, धोखे में जी रहा है, अपना क्या बिगड़ता है, इसके धोखे में अपनी संभाल हो रही है, कर ले बेटा थोड़े दिन और, मुझे जब साथ छोड़ना होगा तो चला ही जाऊंगा मैं। क्या कह दिया यहाँ पर, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। अत्यंत अशुचि, अशुचि नहीं अत्यंत अशुचि, अशुचि पदार्थ तो दुनिया में बहुत दिखते हैं, लेकिन ये देह अत्यंत अशुचि है। जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस तरह से देह के प्रति एकत्व बुद्धि तोड़ाने की यहाँ बात अशुचि भावना के माध्यम से कह दी। छह भावनाएं वैराग्य उत्पादक है। छहों के अंदर वैराग्य की चर्चा की। देखो अनित्य भावना में क्षण भंगुरता की बात कहकर के नित्यता भी बतलाई, लेकिन क्षण भंगुरता जान करके वैराग्य होता है। आचरण भावना में शरण नहीं है, ये वस्तुएं स्थिर नहीं है। देखना एक एक वाक्य, जगत का कोई पदार्थ स्थिर नहीं है, कोशिश करने से भी उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। उन वस्तुओं में उन पदार्थों में सुख नहीं है, उनमें सुख मानने की भावना से जो कर्म बंधता है उसे भी अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है। जहाँ शरीर ही अपना नहीं है वहाँ दूसरे परिवार वाले अपने कैसे हो सकते हैं। और जब ये कहा गया कि शरीर तो अपना दिखता है, इसके प्रति तो कितना सुंदर दिखता है, तो कहा इससे यदि अपनापन तोड़ाना हो तो शरीर के स्वरूप का चिंतन करो। सो अशुचि भावना। अब इन छह भावनाओं के बाद में ये ट्रैक कैसे बदल गया आखिर, आखिर वो तत्व परक भावनाएं कैसे शुरू हो गई, विस्तार से चर्चा अपन कल करेंगे। इतनी बात समझ लीजिए आप कि जब शरीर की अशुचिता और अपवित्रता के बारे में बतलाया गया तो इसको ऐसा लगने लगा इतना अपवित्र हूँ मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता था, ऐसे ऐसा स्वरूप है, इतनी अपवित्रता है। तो आचार्यों ने कहा कि अरे देह की अपवित्रता तेरी अपवित्रता नहीं है, तेरी अपवित्रता तो आश्रम भाव है। तो आश्रम भावना की चर्चा की। उस आश्रम भावना की चर्चा अपन कल करेंगे और कोशिश करेंगे कि छह भावनाएं अपन कल कर ले रहे, क्योंकि कल अपना अंतिम सेशन है।
ले
लेंगे जो भी है, कोई बात नहीं।
कल देख जन जन
ठीक
है।